ये क्या बात हुई दादा साईं? क्या आपके यहाँ रवाज नहीं है कि आप लोग अपनी बीवियों को तोहफे नहीं देते? आप बताएं कि आपने कभी भी दादी साईं को तोहफा नहीं दिया? वो उनके करीब बैठी कब से उनका दिमाग खाने में मसरूफ थी। नहीं धड़कन, हमारे घर में वाकई अपनी बीवियों को तोहफा देने का रवाज नहीं है, दादा साई ने हंसी दबाते हुए कहा। उन्हें करदम से हरगिज ऐसी उम्मीद ना थी। आजकल करदम जो कुछ भी कर रहा था उस सब की ही करदम से उन्हें कोई उम्मीद ना थी। मतलब आपने दादी साई को कभी कोई तोहफा नहीं दिया? धड़कन हैरत और सदमे से देखते हुए पूछ रही थी, जबकि उसकी बात पर उन्होंने नफी में गर्दन हिलाई। इतनी बुरी नाइंसाफी, वो भी मेरी दादी साई के साथ? अल्लाह, अभी तक मेरी दादी साईं की रूह पुरसकून नहीं होगी। उनके शोहर ने कभी उन्हें कोई तोहफा नहीं दिया। लेकिन आप फिक्र ना करें दादी, आपकी पोती आपका बदला ले लेगी। मैं दिलाऊंगी आपको इंसाफ। दादा साईं ने दिल की दिल में उसकी ओवर एक्टिंग को दाद दी। सुन लीजिए दादा साईं, कल मेरे तोहफे के साथ एक दादी साईं का तोहफा भी आप मुझे देंगे, क्योंकि दादी साईं एक औरत थी और उनकी सारी जायदाद पर उनकी पोती का हक है। और अगर कल आप मेरी दादी साई के लिए तोहफा ना लाए तो हर रात आपको उनकी रूह डराएंगी। दादी साई, मैं कह रही हूँ बगैर तोहफे के मत मानना। आपके साथ बहुत ज्यादती की गई है इस हवेली में, लेकिन अब आपकी पोती आपके साथ ना इंसाफी नहीं होने देगी। वो उन्हें सुनाती उठकर बाहर चली गई, जबकि उसके साथ जाते ही दादा साई कहका लगाकर हंसे थे। ओफ, ये लड़की! चौधरी गुस्से से चिड़ा बुड़ा हुआ जमीनों पर पहुंचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ये सामान रखने की? वो इमारती जरूरियात के लिए सामान रखते आदमियों से पूछने लगा। हमें करदम साई का हुक्म है, आदमी ने बिना उसकी तरफ देखे अपना काम जारी रखते हुए बताया। ये सारी मेरी जमीनें हैं, मैं यहाँ पर करदम शाह को कुछ नहीं बनाने दूंगा, और अभी के अभी लेके जाओ वापिस, वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला। लेकिन सामने खड़े आदमियों को ना तो उसके गुस्से की परवाह थी और ना ही उसकी धाड़ की। सुनो मियाँ, ये ड्रामे हमारे सामने मत करो। करदम साई ने कहा है कि ये जमीन उनकी है और यहाँ बच्चियों के लिए स्कूल का तामीरी काम शुरू करवाया जा रहा है। उसने अपने पीछे करदम के खास आदमी जुनेद की बात सुनी थी। करदम साई का ऑर्डर है कि जो भी काम में मुदाखलत करे उसे उठाकर जमीन से बाहर फेंक दो। अब या तो तुम एक साइड पर होकर तमाशा देखो या मेरे आदमी तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब ये बात तुम तो जानते हो कि पुलिस और कचहरियों में जाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियल कागजात ही शाह साईं के नाम है। इसीलिए बंद करो अपनी ये ड्रामे और निकल जाओ यहाँ से। मैं तो सिर्फ जुबान से कह रहा हूँ, अगर साईं आ गए तो इस गाँव में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहोगे तुम। जुनेद बिना डर और खौफ के उसके सामने खड़ा था। ये अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग, करदम साई को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन जमीनों पर सिर्फ मेरा हक है और मैं ये जमीनें किसी को नहीं दूंगा। मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अरे तुम लोगों ने काम रोक क्यों दिया? चलो जारी रखो काम। ये पागल आदमी इसी तरह से ड्रामे करता रहता है। जुनेद ने काम वालों को वापिस काम पर लगाते हुए एक नजर उसकी तरफ देखा, जो गुस्से से घूर रहा था। नहीं छोड़ूंगा मैं करदम साई, मेरे हाथ से मरेगा। याद रखना, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। बहुत जल्द उसका वक्त पूरा होने वाला है, बता देना उसे। चौधरी जिस तरह उससे गुस्से से आया था उसी तरह से वापस चला गया। और उसके जाते ही जुनेद ने करदम को फोन करके यहाँ पर होने वाली सारी कार्रवाई बताई थी और ये भी कहा था कि वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन करदम को उसकी खोखली धमकियों से कोई असर न हुआ और काम जारी रखने को बोलता धड़कन की सालगिरह की तैयारी करने लगा। उसने धड़कन के साथ मजाक किया था कि इस खानदान में बीवियों को तोहफा देने का रवाज नहीं है, जिसे वो सीरियस लिए हुए थी। वो धड़कन के लिए पहली बार खुद से कुछ प्लान कर रहा था और यकीनन ये सब कुछ धड़कन को बहुत पसंद आना था। चौधरी के बारे में करदम ने दादा साईं को कुछ भी नहीं बताया था, ना तो उसके हंगामे के बारे में और ना ही उसकी धमकियों के बारे में, क्योंकि करदम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही उसे चौधरी का कोई डर था। जबकि अब दादा साईं उससे कह रहे थे कि सिर्फ एक बार से ही अपनी नानी से मिल लो, लेकिन वो कभी उस घर नहीं जाना चाहता था। ऐसे मलिक उस अकलौता मामू था, उसके बाप चचा फुप्पो सबका कातिल था। उसने इसका सारा खानदान मिटा दिया था, वो किस तरह से उससे मिलने जाता? लेकिन दादा साईं की जिद उसे मजबूर कर रही थी। दादा साईं के सामने तो वो इनकार कर आया था, लेकिन अपने कमरे में आकर यही सोच रहा था। फिर एक दफा کہ جتنی بار بھی اس کے سامنے سے اس خاندان کی عورتیں گزری ان کی نظروں میں اس نے اپنے لیے بے تحاشا محبت دیکھی تھی، اور احسن ملک بھی تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ جتنی نفرت وہ اس باقی خاندان سے کرتا تھا اس کی نئی جذباتوں کردم اس کے لیے رہتا تھا، اور اس وقت وہ ملک کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ فی الحال وہ صرف دھڑکن کو سرپرائز دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ اس کی برتھ ڈے اسپیشل بنانا چاہتا تھا۔ دادا سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی مجھے یہاں ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور آپ مجھے واپس بلا رہے ہیں، میں تو 15 دن کے لیے یہاں آیا تھا، وہ مقدم نے احتجاج کیا۔ دیکھو مقدم سائیں، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ جب بھی کردم سائیں رخصتی کا فیصلہ کرے گا تمہیں واپس آنا ہوگا، اور کردم نے کہا ہے کہ وہ دھڑکن کی سالگرہ کے دوسرے ہی دن اسے رخصت کروائے گا، دادا سائیں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ او ہو، کردم سائیں کو اتنی جلدی کیا ہے، تمہیں اتنی جلدی کیا تھی جانے کی، دادا سائیں اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولے۔ فی الحال تم واپس آ جاؤ اور بعد میں تم چاروں ساتھ چلے جانا، دادا سائیں نے آئیڈیا دیا جو اسے برا نہ لگا۔ ٹھیک ہے، میں ہوریا کو کہتا ہوں، مقدم نے فون رکھتے ہوئے کہا، اور ایک نظر سامنے باغ کی طرف اکیلے بیٹھے اپنے دل کے قرار کو دیکھا۔ مبارک ہو میرا سونا ماہی، تمہارا سوٹ ضائع نہیں ہوگا، ہم آج شام کو ہی واپسی کے لیے نکل رہے ہیں، کردم سائیں نے رخصتی کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، مقدم اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ بے ساختہ مسکرائی۔ سچی کتنا مزہ آئے گا نا کردم لالا کی شادی میں، وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اسے بتانے لگی جبکہ مقدم نے اس کے چہرے کا پورا جائزہ لیا جہاں ہنی مون ادھورا چھوڑنے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ دادا سائیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آئی ہوں، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کے قریب سے اٹھ کر گئی تھی، اب واپس آئی تو دادا سائیں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ دادا سائیں میں نے پوچھنا تھا کہ مقدم لالا نے ہوریا دیدا کو کوئی تحفہ دیا ہے، اگر نہیں تو ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی ہے، دھڑکن کے ہوتے ہوئے یہاں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، وہ ان کے سامنے بیٹھی بالکل سیریس انداز میں بولی تھی۔ دادا سائیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ نہ جانے کون سی بات کرنے کے لیے آئی ہے، اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ بلکہ یہ سوال میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں، یہ سوال تو مجھے مقدم لالا سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ہوریا دیدا کے ساتھ میں کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گی، وہ اپنے موبائل پر مقدم کا نمبر ملاتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی۔ تم بائی جا کر یہ انصاف کی جنگ شروع کرو، ہم کتاب پڑھ لیں، دادا سائیں نے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بائی جانے کے لیے کہا جب وہ مصروف انداز میں کان سے فون لگائے ہاں میں گردن ہلاتے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دھڑکن کے جانے کے بعد دادا سائیں سوچنے لگے، کیا واقعی ہوریا کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی، کیا صرف گفٹ نہ دینے سے ہوریا کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور وہ کیا جو 19 سال سے اس گھر میں اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اسے تو ہمیشہ سے اس خاندان کی بیٹی بنا کر رکھا گیا تھا، تو اس کے ساتھ کیسی ناانصافی، وہ تو اس خاندان کی عزت ہے، تو کیا عزت کو محبت دینا ضروری نہیں ہوتا، وہ خود سے سوال کرنے لگے۔ وہ معصوم بچی تو اس گھر میں ان کی بیٹی کی بیٹی بن کے آئی تھی، اس کی آخری نشانی بن کے آئی تھی، نہ کہ دشمن کی بیٹی، لیکن انہوں نے اسے ہمیشہ سے دشمن کی بیٹی سمجھا۔ کتنا قرب تھا اس دن اس کی آواز میں جب اس نے یہ کہا تھا کہ آنا شاہ اس کی بھی کچھ لگتی ہے، اور شاہ سائیں نے کیا کیا، اسے غصے سے کمرے سے چلے جانے کا کہا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے اس کی ماں کی فوٹو تک چھین لی۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے، وہ معصوم سی لڑکی پچھلے 19 سال سے دن رات ہم لوگوں کی نفرت برداشت کر رہی تھی، اس جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھو دیا، باپ کی شکل تو اس نے آج تک دیکھی ہی نہیں تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے آپ کو ہوریا کی نظروں میں گرا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ کیا سوچتی ہوگی کہ وہ ان کے بارے میں، کیا ہوں گے دادا سائیں اس کی نظروں میں، ایک ظالم جابر سخت شخص نہیں، اب میں ہوریا کے ساتھ مزید کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، ہم نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ ٹھیک کہتا ہے کردم، وہ نفرت کے قابل نہیں ہے، وہ تو میری اہانا کی آخری نشانی ہے، اتنی سی بات کو سمجھنے میں میں نے 19 سال لگا دیے، وہ بھی اگر کردم مجھے یہ سب کچھ نہ کہتے تو کیا میں ہمیشہ اس سے نفرت کرتا رہتا، یا خدایا مجھے معاف کر دے، میں نے اس معصوم بچی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب مزید نہیں، اب ہوریا کو اس حویلی میں اس کا اصل حق دیا جائے گا، دادا سائیں سوچتے ہوئے اٹھ کر باہر آ گئے۔ ہاں گڑیا بولو، کیوں فون کیا ہے، مقدم واپسی کا سامان پیک کرنے میں ہوریا کی مدد کر رہا تھا کہ دھڑکن کا فون آتا دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ میری دیدا کو تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں، وہ سیریس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کیوں، मुकद्दम ने खैरियत से उसके सवाल पर सवाल किया था। क्यों क्या, मुझसे कुछ मत बोलें, बस बताएं आप उन्हें गिफ्ट देते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं देते तो अब मैं आपके साथ बहुत बुरा सलूक करने वाली हूँ। कान खोल कर सुन लें, सिर्फ आप ही नहीं इस खानदान के हर फर्द को धड़कन अहमद शाह उप्स धड़कन करदम शाह कह रही है कि वो अब खानदान की किसी औरत के साथ ना इंसाफी नहीं होने देगी। मुझे पता चल चुका है कि आप आज रात को वापस आ जाएंगे, इसीलिए मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, जब आप वापस आए तो हुरिया दीदा के लिए कोई गिफ्ट लेकर आइएगा और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा बर्थडे है। धड़कन ने याद कराया तो मुकद्दम बेसाख्ता मुस्कुराया। ठीक है गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आऊंगा, और कुछ, मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए पूछा। और कुछ नहीं, मेरे लिए भी जरूर लाना, लेकिन मेरा दीदा को जरूर दीजिएगा, मैं ये बेतुक्का रवाज हमारे खानदान से खत्म करके रहूंगी। वो अज़्म से कहते हुए फोन बंद कर चुकी थी जबकि मुकद्दम सिर्फ फोन को घूर रहा था। बेचारा करदम साई, वो बुड़बुड़ाते हुए फोन जेब में डालने लगा। वो उसे अपने साथ ज्वेलरी शॉप पर लेकर गया था ताकि धड़कन के लिए कोई गिफ्ट ले सके, लेकिन उसे धड़कन की बात भी बहुत अच्छे से याद थी कि वो हुरिया के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देगी। मुकद्दम अपने दिल के करार के साथ कोई नाइंसाफी करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। उसने पहले धड़कन के लिए स्पेशल बर्थडे गिफ्ट लिया और फिर अपने नाम के पहला हर्फ से बना एक खूबसूरत सा लॉकेट उसने अपनी हुरिया के लिए खरीदा था। अपनी नान को कहना कि मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करता, किसी की परवाह किए बगैर हूर का रुख आईने की तरफ करता। वो ही शॉप पर ही उसे वो लॉकेट पहनाने लगा। वो मेरी नान नहीं, मेरी बहन है, हुरिया ने बताना जरूरी समझा। और वैसे भी आप मेरे साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं कर सकते मुकद्दम साई, मुझे खुद से ज्यादा यकीन है आप पर। शायद ये दुनिया मुझसे मेरा हक छीन ले, लेकिन आप मुझसे मेरा हक भी नहीं छीनेंगे, वो आहिस्ता से आवाज में बोली। यार ऐसी बातें तुम पब्लिक प्लेस में क्यों बताती हो, अकेले में बताया करो ना। माशाल्लाह से इतनी खूबियां हैं मुझ में, लेकिन सारी खूबियां तुम्हें पब्लिक प्लेस में ही आकर याद आती हैं, बंदा दाद भी नहीं दे सकता, मुकद्दम ने शरारत से कहा। आपकी दाद ना मिले इसीलिए तो पब्लिक प्लेस में बताती हूँ, और वैसे भी आपको कौन सा पब्लिक प्लेस की परवाह होती है, आप तो कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं, हुरिया शर्माते हुए बोली, जिस पर मुकद्दम का कहका बुलंद हुआ। अच्छा यार मैं कुछ नहीं कहूंगा, चलो वापस होटल चलते हैं, हमें अभी निकलना है वापसी के लिए, मुकद्दम उसका हाथ थामे बाहर ले जाने लगा, जबकि वापसी का सुनकर वो बहुत खुश थी। सवेरा दीदा ये आप क्या कर रही हैं, सवेरा को किचन में देखकर ताइशा उसके पास आ गई। धड़कन की सालगिरह है ना, उसके लिए केक बना रही हूँ, उसकी हर सालगिरह पर मैं खुद अपने हाथों से केक बनाती हूँ, ये दिन हम सारा दिन एक साथ गुजारते हैं, बाबा साईं मैं और धड़कन घूमने जाते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बहुत मजे करते हैं, सवेरा मसरूफ अंदाज में बोली। यहाँ मैं दिन रात खवार हो रही हूँ उन दोनों की तलाक के लिए, और आप हैं जो धड़कन के लिए केक बना रही हैं, मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ले लूं, ताइशा ने गुस्से से कहा। एक मिनट ताइशा मेरी बात गौर से सुनो, धड़कन मेरी बहन है, कल उसका स्पेशल डे है, और हर साल मैं उसके केक अपने हाथों से बनाती हूँ और अपना सारा वक्त भी उसके साथ ही गुजारती हूँ, और एक बात अपने कान खोल कर सुन लो, मैं धड़कन और करदम के तलाक के लिए तुम्हारी मदद जरूर कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि धड़कन मेरी बहन नहीं है, या मैं उसकी खुशियों में खुश नहीं हो सकती, वो मेरी बहन है, और अगर मुझे मेरी बहन और तुम में से किसी एक को चुनना पड़ा ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को चुनूंगी, और आज के बाद इस लहजे में मुझसे बात मत करना, आज तुम मुझसे मेरी बहन को मारने की बात कर रही हो, ये भी सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें ये कहने का मौका दिया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों मुकद्दम साईं के पीछे पड़ी थी, ये सब कुछ नसीबों का लिखा था, और अब मुझे खुद पता है कि उनकी शादी हो चुकी है और मैं उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैंने ये कोशिश भी नहीं करूंगी। ताइशा तुम भी संभल जाओ, हमारी जिंदगी में वही होता है जो हमारे नसीबों में लिखा होता है, ना तो तुम्हारे नसीब में करदम शाह है और ना ही मेरे नसीब में मुकद्दम शाह, इसीलिए लेट्स मूव ऑन। वो उसके करीब से गुजरती बाहर जा चुकी थी जबकि ताइशा बस उसे देख कर रहेगी, वो ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदल जाएगी, ये ताइशा ने कभी नहीं सोचा था। हुरिया यार जागो, एक तो रात का सफर है, ऊपर से तुम सो रही हो, मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हारे होते हुए मैं सफर में बोर हुआ तो मैं ये गाड़ी कहीं दरख्त के साथ ठोक दूंगा, वो सवात से वापसी के लिए निकले हुए थे। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। उसने रास्ते में एक होटल से हूर को खाना भी खिलाया। काफी देर से सफर में होने की वजह से हूर अब काफी थक चुकी थी, उसे नींद आ रही थी। जब उसने आंखें बंद करके सीट के साथ सर रखा तो मुकद्दम उसे देखकर बोला, मुकद्दम साईं मुझे नींद आ रही है, हूरिया ने बेबसी से कहा। तुम्हारी ये नींद मैं 1 सेकंड में दूर कर सकता हूँ, बस तुम इजाजत दो, मुकद्दम ने शोखी से उसकी तरफ रुख फेरा। मुकद्दम साईं आप आगे देखकर गाड़ी चलाएं, अभी मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है, मैं आपके साथ बहुत लंबी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। हूरिया ने उसका रुख वापिस सड़क पर किया। जीना तो मैं भी तुम्हारे साथ बहुत लंबी जिंदगी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें नींद आ रही है इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी नींद भगा दूं, मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरी नींद भगाने की, जाग रही हूँ मैं जब तक हवेली नहीं आ जाती, हूरिया ने उसके सामने हाथ बांधते हुए कहा तो मुकद्दम कहका लगाकर हंसा। जब तक हवेली नहीं आती तुम खुद से मत सोना, और जब हवेली आ जाएगी मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा, मुकद्दम आंख दबाकर शरारत से कहा। मुकद्दम सही आप बहुत खराब हैं, तो तुम ठीक कर दो ना, मुकद्दम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। खुदा के लिए मुकद्दम सही मुझे सही सलामत हवेली पहुंचा दे, आपके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं, हूरिया ने मिन्नत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर हवेली पहुंच कर ही तुम्हारी खबर लेता हूँ, मुकद्दम ने फिलहाल उसे बख्शने के इरादे से कहा। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ, वो उसकी सुर्ख आंखें देखते हुए बोला। नहीं अब नहीं सूंगी, तब तक नहीं सूंगी जब तक हवेली ना पहुंच जाऊं, हूर ने इनकार करते हुए कहा। देखो बीवी तुम अपनी मर्जी से जाग रही हो, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया, मुकद्दम शरारती अंदाज में बोला तो हूरिया मुस्कुराई और अंधेरी सड़क को देखने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई गाड़ी काफी देर से उनका पीछा कर रही है। मुकद्दम साईं आपको नहीं लगता कि जब से हम होटल से निकले हैं ये गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, हूरिया ने अपना शक उसके सामने बयान किया। अरे नहीं यार ऐसे ही तुम्हें शक हो रहा है, मुकद्दम ने इग्नोर करते हुए कहा, जबकि होटल से अपनी गाड़ी निकालते ही ये गाड़ी उसने अपनी गाड़ी के पीछे आते देखी थी। करदम अपना काम कर रहा था कि दरवाजा बजा, उसने नजरें उठाकर सामने देखा फिर मुस्कुरा दिया, वो दरवाजे के साथ खड़ी थी। क्या हुआ धड़कन तुम परेशान लग रही हो, वो उसका फूला हुआ चेहरा देखते हुए बेड से उठकर उसके पास आया। करदम साईं यहाँ इतना संगीन मसला चल रहा है और आप सोने की तैयारियां कर रहे हैं, आपको चाहिए जो खानदान में कभी किसी ने नहीं किया वो आप करके रिकॉर्ड कायम कर दें, ताकि आने वाले वक्त में आपका एक नाम बन जाए, बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहती वो कमरे के अंदर कदम रख चुकी थी। क्या मतलब है तुम्हारा, करदम सच में उसकी बात को नहीं समझा था, वो उसके पीछे ही कमरे में आता उसके सामने कुर्सी रख कर बैठ गया। ओहो करदम साई आप भी बहुत मासूम हैं, मैं समझाती आपको, देखें आपने कहा था इस खानदान में बीवियों को तोहफा देने का रवाज नहीं है, दादा साई ने मुझे बताया कि उन्होंने भी दादी साई को कभी कोई तोहफा नहीं दिया, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आपसे गिफ्ट लेकर आपके लिए एक रिकॉर्ड कायम कर देती हूँ, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमें अच्छे अल्फाज में याद रखें। धड़कन उसकी अकल पर मातम करते हुए उससे अपनी बात बल्कि अपने मतलब की बात समझाते हुए बोली, जबकि उसके इस हद तक सीरियस अंदाज पर करदम का दिल चाहा कि वो कहका लगाकर हंसे, फिर खुद को संभालते हुए बोला, देखो धड़कन जो काम कभी मेरे अबाओ अजदाद ने नहीं किया वो काम मैं करके उनकी तोहीन नहीं करना चाहता, देखो हमें अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें कोई तोहफा नहीं दूंगा, करदम ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब आपके ये बेतुका सर आवाज हमेशा चलेगा, धड़कन ने सदमे से पूछा, जिस पर करदम ने हाँ में गर्दन हिलाई। मतलब आप मुझे कभी गिफ्ट नहीं देंगे, धड़कन ने मजीद सदमे से पूछा, इस बार भी करदम ने हाँ में गर्दन हिलाई। लेकिन आपको मुझे गिफ्ट देना चाहिए, ये निकाह के बाद मेरी पहली सालगिरह है और मैं पहली बार हवेली में सालगिरह मना रही हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे गिफ्ट दें, धड़कन ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ धड़कन तुम कह तो ठीक रही हो, तोहफा तो मुझे तुम्हें देना चाहिए, लेकिन मैं रवाज का क्या करूं, करदम हंसी छुपाते हुए बोला। तो हम कजन भी हैं ना, आप मुझे कजन के तौर पर गिफ्ट दे दें, हस्बैंड के तौर पर मत दें, इससे आपका सदियों का रवाज भी कायम रहेगा और आपकी तरफ से मुझे गिफ्ट भी मिल जाएगा, धड़कन ने मसले का हल निकालते हुए कहा। लेकिन कजन कहने से हम क्या निकाह में नहीं होंगे, ना मैं अपने रवाज खराब नहीं करूंगा, करदम ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। बस दिखा दिया ना फिर से कि दुनिया के बोरिंग तरीन इंसान हैं आप। इतना अच्छा आइडिया दिया आपको कि कज़न के तौर पर गिफ्ट दे दें, लेकिन बोरिंग तो बोरिंग होता है। दूसरों के आइडिया पर बीवी को इम्प्रेस करने वाले, अपनी बीवी को गिफ्ट ना देने वालों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। वो गुस्से से डराती कमरे से बाहर जा चुकी थी जबकि उसके जाते ही करदम ने दरवाज़ा बंद करके साइड टेबल पर रखे हुए केक को देखा। बेचारी धड़कन अपने गम और गुस्से में उसको देख ही नहीं पाई। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, वो सब कुछ कंप्लीट कर चुका था, अब सिर्फ और सिर्फ धड़कन का गिफ्ट बाकी था। वो उसे क्या गिफ्ट दे, वो खुद कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धड़कन को कौन सी चीज़ पसंद आएगी। ज्वेलरी वो बहुत ज़्यादा पहनती नहीं थी, उसे यही लगा था कि उसे ज्वेलरी ज़्यादा पसंद नहीं है। करदम का इरादा उसको ब्रेसलेट खरीद कर देने का था जो बाद में बदल गया। अब वो आखिरी बार बाजार जाकर उसके लिए गिफ्ट खरीदने वाला था। उसने अहमद शाह से पूछा था कि वो धड़कन के लिए ऐसा कौन सा गिफ्ट लाए जो उसे बहुत पसंद आए। अहमद शाह ने उसे बहुत सारे आइडिया दिए थे और ये आइडिया दिया था कि उसे झूले पर बैठना बहुत पसंद है। अहमद शाह ने कहा था कि वो उसे एक झूला दे दे, लेकिन करदम खुद को कॉपीकैट नहीं कहलवा सकता था। अब वो ये नहीं बता सकता था कि ये वाला आइडिया वो पहले ही कर चुका है। उसने कभी किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया था सवाए हुरिया के, लेकिन फिर हुरिया उसकी बहन थी और धड़कन उसकी बीवी। अब बहनों वाले गिफ्ट वो बीवी को नहीं दे सकता था। मैं थोड़ी सी हेल्प करूं, वो बेचैनी से सोचते हुए इधर उधर टहल रहा था जब उसे सवेरा की आवाज़ सुनाई दी। उसने सवेरा से कभी खुद से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि उन दोनों का सामना भी सिर्फ खाने की मेज़ पर ही होता था। करदम लाला, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप धड़कन को क्या गिफ्ट दें तो वो बहुत खुश हो जाएगी, सवेरा ने मुस्कुराते हुए राजदार अंदाज में कहा। उसे सवेरा से कोई लेना देना नहीं था, बस मुकद्दम के लिए उस दिन सुनी उसके मुंह से अल्फाज उसे बुरे लगे थे। मगर अब मुकद्दम हुरिया से शादी कर चुका था और इस शादी से बहुत खुश भी था, इसीलिए सवेरा से नाराज रहने का कोई फायदा नहीं था। इसीलिए उसने सवेरा की मदद लेने के बारे में सोचा और सवेरा उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। उसने सवेरा के कहने पर अमल करते हुए वो सब कुछ किया जो धड़कन को पसंद आए, और सवेरा के ही कहने पर वो धड़कन के लिए गिफ्ट भी ले आया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों सब लोग मेरा गिफ्ट खा जाते हैं? करदम साईं मेरे साथ इस तरह से कैसे कर सकते हैं? ये मेरी पहली सालगिरह है जो मैं उनके साथ मनाऊंगी, वो भी निकाह के बाद। करदम साईं को चाहिए कि वो मेरा बर्थडे स्पेशल बनाए, और वो हैं जो घोड़े बेचकर अपने कमरे में सो रहे हैं। मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी करदम साईं, सारी ज़िंदगी मुझसे ताने खाएंगे गिफ्ट ना देने के लिए। बहुत ही जालिम टाइप बीवी बन के दिखाऊंगी आपको। लोगों ने जालिम शोहर के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन मैं जालिम बीवी बन के दिखाऊंगा। रात दिन जुर्म करूंगी आप पर, सारी ज़िंदगी पछताएंगे मुझे गिफ्ट ना देने के लिए। बहुत बुरा किया है आपने मेरे साथ, इसका अंजाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। धड़कन यहाँ से वहाँ टहलती मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। ये उसकी शादी के बाद पहली सालगिरह थी और करदम का फर्ज बनता था कि वो उसे गिफ्ट दे धड़कन के मुताबिक। लेकिन करदम को तो इस बात का होश ही ना था, उसे तो बस अपने रवाज की पड़ी थी। कोई कैसे कर सकता है अपनी मासूम सी बीवी के साथ ऐसा, वो बेड पर बैठी मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोली। धड़कन तो क्यों परेशान हो रही है, बाकी सब तो गिफ्ट देंगे ना, उसने अपने मासूम दिल को समझाना चाहा। लेकिन करदम साईं तो नहीं देंगे, उसने अपने मासूम दिल की मासूम सी ख्वाहिश को दिल में ही दफनाते हुए मासूमियत से कहा। आप बहुत गंदे हैं करदम साईं, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, अगर आपने कल मुझे गिफ्ट ना दिया तो, वो खुद को कंबल में लपेटते हुए बोली और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। नींद थी जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो उसके रूठने पर उसे मनाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट नहीं ले सकता। कौन सी सदी के हैं ये रवाज, कहाँ मिलते हैं इस तरह के रवाज? इस रवाज को तो मैं ख़त्म करके रहूँगी। तायशा सुबह से सवेरा की हरकतें देख रही थी, कभी वो करदम के पास मिल रही थी तो कभी अहमद शाह के कमरे में धड़कन की बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी। तायशा को उसे देख कर गुस्सा आ रहा था, वो उसके साथ इस तरह से कैसे कर सकती है? यहाँ उसकी जान पे बनी हुई है और वहाँ वो धड़कन की सालगिरह की तैयारी कर रही है। अब बात उसकी बर्दाश्त की हद से ऊपर जा चुकी थी, इसीलिए बहुत गुस्से से सवेरा के कमरे में आकर रुकी। जबकि सवेरा को इस तरह से उसका अपने कमरे में बिना इजाजत आना नागवार गुजरा था। क्या लगता है आपको सवेरा दीदा, ये जो सब कुछ आप कर रही हैं वो सही है? कल तक आपको मुकद्दम लाला बहुत पसंद थे, आप उनको हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, और अब अचानक ही उनसे आपका दिल भर गया। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर आपने इस तरह से रास्ते में मुझे छोड़ा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि वो पेपर आपने चौधरी तक पहुंचाए थे। तुम नहीं तायशा, ये बात मैं खुद सबको बताने वाली हूँ। और मुझे धमकियां देने से बेहतर है कि तुम सुधर जाओ और आइंदा इस तरह से मुंह उठाकर मेरे रूम में मत आना। वो उसकी बात काटते हुए बाहर जाने का इशारा करते हुए बोली, जबकि इतनी तोहिन के बाद तायशा भी उसके कमरे में ना रुकी। 12 होने में 20 मिनट बाकी थे। वो आहिस्ता से अपने कमरे से निकला और उसके कमरे की तरफ चल दिया। उसने दरवाजा खटखटाने की जहमत ने महसूस की। वो अपने आप को कंबल में कैद किए मुकम्मल तौर पर नींद की वादियों में गुम थी। करदम ने एक नजर नीचे राहदारी की तरफ देखा जो बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, और फिर वापिस आके आहिस्ता से उसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में उठाया और उस राहदारी की तरफ चला आया। इस दौरान उसने मुकम्मल एहतियात की थी कि वो अपनी नींद से ना जागे, क्योंकि इस तरह से करदम को देखकर वो चीख चीख के पूरी हवेली को जगा देगी। और फिलहाल करदम ये नहीं चाहता था। उसका इरादा 20 मिनट के अंदर ही धड़कन को वापस उसके कमरे में छोड़ने का था, क्योंकि दादा सही और अहमद शाह ने उससे सरप्राइज देने के लिए 12 बजे की पूरी प्लानिंग की हुई थी। मुकद्दम साईं, धड़कन की सालगिरह शुरू होने वाली है, हम कब तक पहुंचेंगे? हुरिया ने पूछा। बस थोड़ी देर और मेरी जान, धड़कन की सालगिरह के ऐन वक्त तो नहीं, लेकिन 30 मिनट तक पहुंच जाएंगे, मुकद्दम ने मुस्कुराकर कहा। धड़कन की हवेली में पहली सालगिरह है और मुझे लगता है कि वो बहुत मस्तियां करने वाली है। बाहर के लोग तो होंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी हवेली में बहुत काम होगा, बहुत कुछ संभालना होगा। सबर 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 मेरी बेगम, काम करने और काम संभालने के लिए घर में और लोग भी मौजूद हैं। तुम इन बातों की टेंशन मत लिया करो, तुम्हें बस एक ही बात की टेंशन होनी चाहिए कि अपने शोहर का ख्याल कैसे रखो, उसे कैसे संभालो। और तुम हो के जिसे हर किसी की पड़ी रहती है सवाए अपने शोहर के, इसीलिए तो तुम्हें हवेली से दूर लेकर गया था। लेकिन दादा साई और करदम साई का गुजारा नहीं है मेरे बगैर। यार हद है, बंदा सुकून से हनीमून तो एंजॉय करने देता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, दादा साई ने मुझे ऑफर दी है कि धड़कन और करदम साई की शादी के बाद हम चारों घूमने जाएंगे। इस बार कसम ले लो, बेशक करदम साई पहले आ जाए, लेकिन मैं तो 2 महीने लगा के ही आऊंगा। हम सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, जिसमें किसी तीसरे की मुखालफत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुकद्दम ने उसे अपने इरादे बताए, जबकि उसकी बातों पर वो सवाए मुस्कुराने के और कुछ नहीं कर रही थी। उस शख्स को समझाना वैसे भी उसके बस से बाहर था, और उस शख्स से बहस करना या बातों में जीतना नामुमकिन, इसीलिए तो वो उसकी हर बात खामोशी से मान लेती थी। उसे आहिस्ता से उठाकर बाहर लाया। ये वही जगह थी जहां उसने धड़कन के लिए झूला लगाया था। धड़कन के जागने का सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। उसका इरादा धड़कन को जगाकर पहले खुद यहां से गायब हो जाने का था, लेकिन बाद में सोचा कि इस तरह से ये बहादुर शेरनी डर जाएंगी, क्योंकि उसकी बहादुरी का नजारा उसने आज सुबह ही देखा था, जब उसने दादा सही को बाजू से पकड़ते हुए उनके कमरे में दीवार से चिपकी हुई छिपकली की तरफ इशारा किया। ये शरारतें, ये मस्तियां धड़कन की तबीयत का हिस्सा थी, जबकि करदम इन सब चीजों से बहुत अलग था। लेकिन धड़कन की उसकी जिंदगी में आने के बाद वो बहुत बदल चुका था। वो इतना कैसे बदला था ये वो खुद भी नहीं जानता था। उसे कुछ पता था तो बस इतना, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता था। अब उसे यकीन है कि कोई है जो उसके दुख में दुखी होगा और उसकी मुस्कुराहट पर मुस्कुराएगा। उसने मुस्कुराते हुए धड़कन को जमीन पर खड़ा किया और कंधों से पकड़कर उसे एक झटका देकर जगाया। अपने आप को इस सुनसान वीरान जगह पर देखकर उससे पहले कि वो चीखती, करदम ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंट दिया। धड़कन साईं, इतनी भी क्या चीखने की जल्दी है? अभी तो तुमने मेरा सरप्राइज देखकर बेहोश होना है, उसके मुंह पर हाथ रख के उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला तो धड़कन ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। हैप्पी बर्थडे मेरा पटाखा साईं, वो भी तुम्हारे बर्थडे से 20 मिनट पहले, वो मुस्कुराते हुए बोला। हवेली की बस थोड़ी सी रोशनी इस तरफ आ रही थी, शायद ही वो उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए देख पाई थी। फिर उसने दबी दबी आवाज में उसका हाथ अपने चेहरे से हटाने के लिए कहा, जो करदम ने फौरन ही हटा दिया। ये क्या तरीका है, और मैं यहाँ कैसे आई? इस तरह से कोई डराता है क्या? कौन सा सरप्राइज प्लान किया है आपने मेरे लिए इस अंधेरे में, जैसे देखकर मैं बहुत खुश हो जाऊं? हद होती है करदम साईं, आपके आइडियाज भी आपकी तरह बोरिंग ही होते हैं। अब इस अंधेरे में आपको कुछ नजर आ रहा है जिसे देखकर मैं खुश? अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक लाइट्स चल उठी। छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइटों से पूरा झूला सजाया गया था। सिर्फ झूला ही नहीं बल्कि आम का ये बड़ा दरख्त भी मुकम्मल सजा हुआ था। हर तरफ रोशनियों की लड़ियां लहरा रही थी। वो झूला जो उस दिन करदम ने उसे दिखाया था, ये झूला इस झूले से बिल्कुल ही अलग था, बल्कि इस बार इस झूले में एक जाली नुमा झूला लगाया गया था। इस बार जमीन पर भी मिट्टी का नहीं बल्कि फूलों का फर्श था। इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए धड़कन की जुबान अचानक ही रुक चुकी थी। वो क्या बोलने जा रही थी उसे खुद भी याद ना था। तुम्हारा गिफ्ट वहां है, उसने झूले पे पड़ी हुई टोकरी की तरफ इशारा किया। धड़कन को अंदाजा था कि शायद अगर करदम ने उसे तोहफा दिया भी कोई ब्रेसलेट कोई लॉकेट देगा, लेकिन वो उसे टोकरी दे रहा था कि उसमें आखिर क्या होगा, फ्रूट्स? धड़कन ने इस रोमांटिक माहौल में एक नजर करदम को देखा जो फिर से बोरिंग होने का सबूत दे रहा था। पहले मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सा ब्रेसलेट खरीदता हूँ, फिर सोचा तुम इसका क्या करोगी, तुम में तो लड़कियों वाली आते कम ही है, काम तो तुम्हारे का कोई है ही नहीं, इसीलिए ये तुम्हारी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। करदम वो टोकरी उठाकर उसके करीब लाया जबकि धड़कन अभी भी उसे घूर रही थी। धड़कन, मैं तुम्हारा ही हूँ, मुझे जितना मर्जी देख लेना, लेकिन एक नजर। करदम उस मासूम की तरह भी उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर उसे झूले पर बिठाया और टोकरी की गोद में रखी। धड़कन को महसूस हुआ इस टोकरी में कुछ हिल रहा है। करदम साइंस में क्या है, उसने सरगोशी के अंदाज में पूछा था जब करदम ने मुस्कुराते हुए खुद ही वो टोकरी खोलकर उसके सामने कर दी। बेहद क्यूट सफेद नरम मुलायम बालों वाली एक छोटी सी बिल्ली को देखते ही धड़कन की सचमुच में चीख निकल गई। ये कितनी प्यारी है करदम साईं, थैंक यू सो मच। अगले ही लम्हे वो झूले से उठकर उसके सीने से लग चुकी थी। आपको पता है मैंने बाबा को बहुत बार बोला कि मुझे कैटी चाहिए, वो कभी भी मेरी बात नहीं मानते थे। एक बार सदीक अंकल को बोलकर मैंने क्यूट सी कैटी मंगवाई लेकिन वो बाबा को पसंद नहीं थी, फिर वो कहीं गायब होगी और मुझे कभी वापस नहीं मिली। मुझे लगा था कि उसे बाबा ने कहीं छुपा दिया लेकिन बाबा ने मेरी कसम खाई कि वो उनके पास नहीं है। फिर मैंने बाबा को बोला कि वो दोबारा मुझे कैटी ला कर देंगे तो उन्होंने कहा अब तुम्हें वही कैटी ला कर देगा जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। उसके सीने से लगी अपनी बातें बताती ना जाने क्यों रोने लगी। धड़कन तुम रो क्यों रही हो, उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर मोहब्बत से पूछने लगा। थैंक यू करदम साईं मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए, वो मासूमियत से कहती एक बार फिर से उसके सीने पर अपना सर रख के, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसकी बातों से अंदाजा लगा रहा था कि ये गिफ्ट तो उसे बहुत पसंद आया है। थैंक यू सवेरा, उसने दिल ही दिल में सवेरा को शुक्रिया अदा किया था जिसने उसे ये बताया था कि धड़कन को सबसे ज्यादा बिल्ली पसंद है।